इसका एक और झांसा भी है। किसी मुल्क में, मैं नाम नहीं लूंगी, पैदा होने वाली और बरतानिया और अमेरिका में तालीम हासिल करने वाली 24 साला मुसलमान लड़की, मिस नाम भी लिखा हुआ है, मैं नहीं बोलूंगी, फलां शहर के फलां मुल्क में 19 सितंबर 2001 को उरिया औरतों का मुकाबला हुसन मुनक्कद कराने का ऐलान किया है। बिल्कुल मादाजात नंगी। बस मर्दों की तरफ से उरिया मुकाबला हुसन पर तनकीद का जवाब देते हुए फुला मिस ने कहा, इससे जनरल नॉलेज पैदा होगा। उरिया तस्वीरें आर्ट गैलरी में दिखाई जाएं तो लोग फन के नाम पर इसकी तारीफ करते हैं। मैं इसी फन को जिंदा शक्ल में पेश करके खवातीन को बाइज्जत मुकाम दिलाऊंगी। क्या समझे? मुहज़्ज़ब, डिसेंट और तरक्की याफ्ता वेस्टर्नाइज माहौल में अब उरिया रहना, नेकेड रहना कोई ऐब नहीं, एक फन बन चुका है, आर्ट बन चुका है, कल्चर और सकाफत का नाम दिया हुआ है। और वो लोग जो दुनिया को रोशन ख्याली का दावा करते हुए थकते नहीं है, वहाँ अगर आप देखें तो एक सिटी भी है, नेकेड सिटी। मैं खुद उसको बहुत करीब से जानती हूँ, लेकिन वो शहर है कि जिसके अंदर कपड़े पहनने बाय लॉ क्राइम है। जी, मैंने आपको इशारा दिया कि मैं उसको बहुत करीब से देख चुकी हूँ। कपड़े नहीं पहन सकते आप उस मुल्क में, जाएंगे तो पुलिस पकड़ लेगी अगर कपड़े पहनते हैं। और आर्ट गैलरियों में फन के नाम पर उरियां तस्वीरें नुमाइश करना, अजायब घरों में आसारे कदीमा के नाम पे ऐसी चीजों को रखना, ये तो बड़ी आम बात है। और आप देखिए कि आज हुसन के नाम पे, ब्यूटीफाई के नाम पे पार्लर्स के अंदर औरतें औरतों के सामने जिस्म खोल देती हैं, और औरतें औरतों के सामने तो खोलती थी, अब तो मर्दों के सामने खोलती हैं, और कहते हैं कि बेहतरीन ब्राइडल मेकअप है ही वो जो मर्द करे किसी औरत का। ऐसे ऐसे नाम कॉन्शियस लोग हो गए हैं कि वो अब अपनी बेटियों और बहुओं के मेकअप शादियों पे औरतों से नहीं कराते, कहते औरतों को क्या पता ब्यूटी सेंस क्या होती है, वो तो अब मर्द करेंगे, उनको पता है औरतों की क्या चीज़ कहाँ नुमाया करनी है। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। और सिर्फ एक साल पुरानी बात है, मैं खुद उस शहर में उस वक्त मौजूद थी जिस वक्त ये खबर चल रही थी, और जो लोगों ने वहां जाकर आंखों देख के बताया, शहर का जिसको आप सिटी सेंटर कहते हैं, डाउनटाउन कह लीजिए, अपने मुल्क के हिसाब से हर एक को पता है, वहां लोग जमा हुए होमोसेक्सुअलिटी की हिमायत में। और क्या बताऊं, जिस्म पे सिर्फ कुछ प्राइवेट पार्ट्स पे पेंट। और दुख की बात क्या थी, जिसको मीडिया ने कवरेज दी, शायद आप तक भी खबर पहुंची हो, कि उसके अंदर एक बड़ा किरदार अदा किया था एक सोमाली मुसलमान लड़की ने, और उसकी हिफाजत के लिए ऊपर, हमने खुद आवाज़ें सुनी थी हेलीकॉप्टर की, कि उसके ऊपर हेलीकॉप्टर से तहफ्फुज़ का पहरा दिया जा रहा था। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि मेरे माँ बाप मुझे मार देंगे, लेकिन वो रिप्रेजेंट कर रही थी किसको, कि होमोसेक्सुअलिटी इज़ ओके। आप और मैं क्या समझते हैं, कभी सोचिए, रातों की नींद उड़ जाती है अगर घर में जेवर रखा हो, और घर में अगर कोई कीमती चीज़ हो, माल हो, सफर में कुछ हो, तोते उड़ जाते हैं, लेकिन हर तरफ हुसन बिखरा हो, हमें कोई फिक्र नहीं, हमारी कीमती चीज़ें ओपनली खुले, हमारे में पर्ल्स हैं और वो हिडन की बजाय वो ओपन होकर बैठे हैं, और हम क्या कहते हैं, क्या करें फिर, जैसा देश वैसा भेस। और दुख की बात क्या है, पहले माँ बाप बच्चियों को मशवरा देते थे, मशवरा नहीं, मैं अपने बाप का हुक्म सुना देती हूँ आपको, स्कूल तक भी बड़ी चादर लेके जाते थे हम, जिसको उस दौर में लोग निकाब वाली चादर कहते थे, मुंह पे भी निकाब होता था सब। और जब स्कूल खत्म हुआ और कॉलेज जाने की इजाजत मांगी तो शर्तें दो थी, जिसमें एक ये थी कि बुरका पहनना पड़ेगा, यानी ये हमारे माँ बाप का हमें मशवरा नहीं था, हुक्म था। और मान लिया कि इस पे बहस करने की कोई जरूरत नहीं या फायदा नहीं होगा, निकाब बुरके पहन के जाते थे। और आप में से भी 10 सिस्टर्स को तो जरूर याद आ जाएंगे अपने ससुर और बाप या दादे नाने, कि जिनको देखकर बहू बेटियों की जान निकल जाती थी, बुरके के बावजूद अगर कोई बाजार में देख ले, सबसे बातें कर लेंगी, अब्बा जी और फलां जी और चाचा जी और मामू जी और फूफा जी को देखकर इधर उधर खिसक जाती थी औरतें, ये हम थे। आज क्या हो गया, शैतान ने ऐसा कर दिया कि उसने हमारे लिबास हल्के कर दिए, इस तरह से कर दिया। और अफसोस की बात है कि फैशन के नाम पे फटी हुई पैंटें खुद फाड़ते हैं, फाड़ के देते हैं, पुरानी हो गई है फैशन की, मतलब पहली थी तो अब उसको नए फैशन में बदलना, तो खुद ही फाड़ के उसको इधर उधर काट फाट दे दो कि चलो बच्चे यही पहन लो तुम, अब नई क्या लेनी है। पहले लोग नई चीजें खरीदते थे, अब लोग पुरानी चीजें खरीदते हैं। जरा सोचिए तो सही, ये सारी चीजें क्या है जरूरत है इस बात की कि हम देखें, और दूसरों को तो छोड़ दे। मुझे कभी किसी गैर मुस्लिम को बुरे कपड़े और खराब हालात में देखकर गुस्सा तो नहीं आया कभी, अल्हम्दुलिल्लाह। दुख तो हर एक को देखकर होता है, लेकिन जब किसी अपने दीन वाले, अपने प्यारे नबी की मोहब्बत में दावे करने वाले किसी इंसान को, औरत है या मर्द, मैं जब खराब हाल हुलिये में देखूं, तो जो तकलीफ, गुस्सा और दुख होता है ये बयान से बाहर है। मुझे ऐसे लगता है कि ये भी करके देख लो फिर भी तुम्हें खुशी कोई नहीं मिलनी, तुम्हें सुकून नहीं मिलना। और आज खासतौर पे जब हम अपने मुसलमान कल्चर की खवातीन को देखते हैं, तो उसमें क्या कुछ है, किधर है। आप वेस्ट की बात करते हैं, मैं आपको ईस्ट की बात बता सकती हूँ। ईस्ट की बात है, एक सिस्टर वेस्ट में मेरे साथ ही रहती थी, पाकिस्तान गई 2 माह के लिए, और वापस आकर जो उन्होंने दिल सोज वाकयात सुना है, क्योंकि पीछे से एक मॉडर्न फैमिली से ताल्लुक रखती थी, आ गई अमेरिका, कुरान मिल जाए, जब कुरान मिलता है चाहे मक्का में बैठ के मिले या आपको अमेरिका में मिले या ऑस्ट्रेलिया में मिले, वो उसका असर एक ही होता है, शर्त यह है कि उसको अमल के लिए पढ़ना हो। चेंज हो गई, शुरू में उन्होंने स्कार्फ लिया, खुद ही लेते हैं हम किसी को क्या कहेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अबाया पहना। इतने में पाकिस्तान गई किसी शादी में, और गई भी अपने इन लॉज के पास, और जो आके उसने बातें बताई हैं ये आज की बात नहीं है, कम से कम 10-12 साल पुरानी बात है। कहती कि साजा उसने मेरे देवर ने मेरा हिजाब यूं खींचा, और वो भी कोई इतना टिपिकल हिजाब और निकाब नहीं पहनती थी जैसे एक आम मॉडर्न किस्म का हिजाब और निकाब। कहती कहीं जाने के लिए तैयार थे, मैंने अबाया पहना ऊपर स्कार्फ पहना, तो मेरा देवर रुक गया, मैं तो नहीं लेके जाऊंगा भाभी को, इसको को पहले उतारे, मुझे शर्म आती है उसको देखकर। यानी आज हम मुसलमानों के शौहर ऐसे भी हो गए कि वो कहते हैं हमें पर्दे में लेके जाते हुए शर्म आती है, और ये तो अक्सर औरतें कहती हैं, वो कहते हैं आगे नहीं बिठाऊंगा पीछे बैठो, और खबरदार किसी को बताया कि मैं तो मेरी बीवी हूँ। ये हाल हो गया हमें, हमारा वो आज से 200 साल पहले शायद अकबर अलाहाबादी की जो बात थी वो याद कर लें कि कहाँ पड़ गए पर्दे, अकलों पे पड़ गए। आज वहां पर्दे हैं जहां जरूरत कोई नहीं, मुरस्सा पर्दे, एक की जगह 3 पर्दे दीवार के ऊपर, खिड़की पे पर्दा, नेट का पर्दा, जाली का, फिर उस पे समर वेल्स हैं और उसके ऊपर विंटर, और नॉर्वे में तो 3-3 पर्दे हैं, रातों में गर्मियों में तो आपको काले रंग की चादरें तानते हैं फिर नींद आती है क्योंकि रोशनी रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, और बाज लोगों ने खूबसूरती के लिए फिर दीवारों पे भी लगाए होते हैं कि चलो अच्छा लग रहा है, मैचिंग है। जो चीजें पहले छुपी हुई थी उनके ऊपर और पर्दे, और अपने ऊपर नहीं है। आज बच्चियां जो कपड़े पहनती हैं, छोटी बच्चियां, मैं बड़ी की बात नहीं कर रही, 1-2-3 साल, सभी बताइए कभी लोग पहनते थे, आपने कभी ऐसे कपड़े पहने थे जो आज आपकी पोतियां नवासियां पहनती होंगी? मैं आपको नहीं जानती वल्ला ही, किसी के घर में तो मुझे नहीं पता, और मैं तो वो बात कहती हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखी है, और इसी तरह आपने आपको देखे। आज की बेटी और बाप किस हाल हुलिये में, आमने सामने भाई बहन, और इसी तरह से बाकी चीजें। असल बात यह कि वो कहते हैं ना कि एहसास जिया जाता रहा, हमारे दिल में अब इसका एहसास नहीं रहा। और आप कहते हैं अच्छा नहीं, लिबास तो पूरा होता है लेकिन तंग, अल्लाह ने क्या कहा, युवारी सौआती गुम, और चीज छुपती दो रंग से है, नंबर एक सी थ्रू ना हो और दूसरी बात है टाइट ना हो। लिबास का मकसद है, हम पढ़ेंगे इस बुक में इंशाल्लाह, लेकिन थोड़ा सा हिंट ले लीजिए कि दो ही शरायत है लिबास की, एक है सौआतिकुम, युवारी सौआतिकुम, और फिर अगली दूसरी है रीशा, प्राइवेट पार्ट, जो शर्मगाह को या नुमाया होने वाले हिस्सों को कैसे छुपाया जा सकता है। नंबर एक मोटा लिबास हो, सॉफ्ट ना हो, और दूसरी चीज क्या है, सी थ्रू ना हो कि उसके अंदर से नजर ना आए, यानी सी थ्रू ना हो, और दूसरी चीज है कि जिस्म के साथ चिपका हुआ ना हो, ऐसे ही है ना। और उसके बाद फिर क्या होता है, दूसरी चीज के जिसको आप कह सकते हैं ना कि इलास्टिसिटी ना हो। अब आप इस चीज को जरा सामने लें, गर्मियों के कपड़े लॉन पतली गुल अहमद की, और जितना अल्लाह माल दे देता उतनी लॉन पतली होती जाती है, और चिकन की शलवारें होल्स वाली, लेस लगे ट्राउजर्स, कम अज कम आधे टखने तो खुल ही जाते हैं, घुटनों से आधी जगह तो खुली होती है। और फिर आप बताइए, ये जो टाइट्स के नाम पे एक मुसीबत हमारी कौम पे मुसल्लत कर दी गई, ये क्या है? युवारिसुवातिकुम है वल्लाही, जितनी नजरें इन पजामों को देख के गंदी होती हैं, शायद ही कभी भी हम। लेकिन हैरत होती है बाप पे, हैरत होती है भाई पे, हैरत होती है माँ पे। ऐसे लगते हैं इनका तो कोई भी नहीं है जो इनको देखता और इनको रोकता। ये कब हुआ? एहसास खत्म हो गया। गोश्त के बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये भी नहीं कि कोई छोटी बच्ची है, मोटे जिस्म, भद्दे जिस्म। और जब ऐसे तंग कपड़ों में हो, मुझे बताइए किस चीज की दावत दी जा रही है? अल्लाह से दुआ करें कि हमें बदल दें। और याद रखिएगा कि वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास से जिया जाता रहा। ये जब एहसास खत्म हो जाता है ना, उसके बाद ही सारी गड़बड़े शुरू होती हैं। और अफसोस की बात है कि आज एहसास खत्म होता हुआ दिखता है। फिर आप देखिए कि कुरान पाक में एक आध और मुकाम है कि जहां ब्राह रास्त लबिसा यलबसु का जो लफ्ज है, ये लिबास के मानों में इस्तेमाल हुआ है, और वो क्या है? सूरत नहल 14। अब यहां आपको लिबास का दूसरा एंगल समझ आएगा। युवारी सवातिकुम के बाद दूसरा क्या था? रीशा। रीश कहते हैं परिंदे के पर को, खूबसूरती। यानी लिबास खूबसूरत हो सकता है? आपको अल्लाह ने ये नहीं कहा आप खद्दर पहने, मोटे पहने, खराब कपड़े पहने, बेढंगे पहने? नहीं, सॉफ्ट कपड़े पहनिए, एम्ब्रॉयडर्ड पहनिए, कढ़ाई वाले पहनिए, मोती सितारे लगा लें, लेकिन जरा सी अकल इस्तेमाल करें कि कब कहाँ क्या पहनना। मैया तले घर में कोई रीश वाले कपड़े पहन जाए तो सब देखेंगे, ऐसे ही है ना? और खुशी वाले घर, शादी में आप जाकर तुम कुचला मुचला लॉन का जोड़ा पहन के चले जाएं तो भी देखेंगे। ये आपको समझ होनी चाहिए कि कहाँ क्या पहनना है। इतनी बात तो क्लियर है ना? इसी तरह जब हम मौसम के लिहाज से कपड़े पहनते हैं, मसलन गर्मी, और आप किसी को देखें वो वुलन जोड़ा पहनकर ऊपर कोट स्वेटर चादर मफलर पहन के कमरे में दाखिल हो, कैसा लगेगा? बेवकूफ लगेंगे ना। और अगर सर्दियों में कोई लॉन का जोड़ा पहनकर किसी जगह जाए, लोग कहेंगे इसको क्या हो गया, शायद है ही नहीं, इसको जल्दी से कुछ ऑफर कर दो। तो जब इतनी सेंस है कि मौसम के मुताबिक पहनना है, मौके के मुताबिक पहनना है, तो फिर जरा सी सेंस बढ़ा लो कि मुझे इस हाल हुलिये में देखकर जिनसे मुखालिफ क्या सोचेगी। बात वाजे, जिनसे मुखालिफ समझते हैं, औरत के लिए मर्द, मर्द के लिए औरत, बस इतना सा फर्क करना है। अब इस सेंस में देखें तो सूरह नहल 14 में क्या है?
وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
وهي هي جسنے مسخر کر دیا دریا کو تاکہ تم کھاؤ اس میں سے تازہ گوشت. یہ کون سا ہوتا ہے؟ सी फूड है। और वतस्तखरी जुमीन हो हिलिया, और तुम उसमें से निकालते हो हिलिया, गहने, यही मोती पल जो आपको कहानी सुनाई है। करते क्या? तल बसू नहा, तुम पहनते हो उसको। यानी यहां देखिए जेवर पहनने की बात हुई है। अभी इंशाल्लाह ये जो बुक आपके साथ शेयर करेंगे ना, आप देखेंगे इसमें मोर देन कपड़े हैं, इसमें दाढ़ी भी है, इसमें मिसवाक भी है, इसमें यानी लिबास के नाम पे जो मुख्तलिफ चीजें आप देखेंगे ना, अगर आप देखें तो हम तो कपड़ों को कहते हैं, हालांकि नाखूनों का लिबास, जुब्बा, कुबा, कमीज, हिजाब, दाढ़ी, एक-एक चीज़ अलग-अलग पढ़ेंगे। और कुछ चीज़ें आपको इतनी हैरान कुन लगेंगी, मुझे उम्मीद है कि जब आप पढ़ेंगे आप कहेंगे हमने तो सोचा भी नहीं था कि लिबास के नाम में ये सब कुछ भी आता है। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ ये बात बता दी कि खूबसूरती के लिए भी लिबास पहना जा सकता है, और गहने जेवरात, यहां से तो ऐसे लगता है कि मर्द भी पहनते हैं। और हदीस में आता है कि जन्नत में जन्नतियों को वहां तक जेवरात पहनाए जाएंगे जहां तक उनके वजू का पानी पहुंचेगा, चमक भी होगी, जेवरात भी होंगे। और बाज रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने कुछ फरिश्ते मखसूस कर दिए उस दिन से जब से दुनिया बनाई, कब तक? क्यामत तक, जो जन्नतियों के लिबास और जेवरात बना रहे। तो अल्लाह ने मना तो नहीं किया, शर्त एक है, कब कहाँ दिखाना है, कब नहीं दिखाना। अपने शौहर के लिए आप 50 तोले पहन कर बैठ जाएं, आपको कौन रोकता है? آپ ریشم کی مخاب اور ململ اور جو آپ کا دل کرتا ہے آپ پہنیے, دکھائیے اپنے شوہر کو, کوئی آپ کو نہیں روکتا. لیکن وہاں نہیں دکھانا جہاں خرابی ہے. پھر اسی طرح سورت نحل 112 میں اللہ نے لباس الجوع والخوف کی بات کی ہے, یعنی وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. اللہ بیان کرتا ہے ایک ایسی بستی کی کہانی جو بڑی مطمئن تھی, امن والی تھی, یعنی پیسفل تھی. یاتیہا رزقہا رغدا, ہر طرف سے رزق آتا تھا, من کل مکان, ہر طرف سے, یعنی بڑی خوشحال بستی تھی, کوئی ٹاؤن تھا, کوئی علاقہ تھا. آج کے دور کا کوئی مشہور ملک سوچ لیجئے, جگہ جہاں لوگ بھاگے دوڑے پھرتے ہیں. لیکن فکفرت بأنعم اللہ, پھر کفر کیا انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا, نشکری. اور وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب وہ چیزیں پیش کی جائیں اس جگہ جہاں پیش کرنے کی ضرورت نہیں, تو کیا ہوا, فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس سفر میں کہ بھوک اور خوف کا لباس کیا ہوتا ہے. پھر یہ جو میں نے آپ کو بھی بتایا نا, جنت میں جنتی کچھ پہنیں گے, تو سورت الکہف کا نمبر نوٹ کر لیجیے 31, اتنا حصہ بیچ میں پڑھ دوں. اولائک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار, یہ وہ لوگ ہیں جو ان جنتوں میں داخل کی جائیں گے جو ہمیشہ رہیں گی, اور نہریں بہتی ہیں ان میں. یحلون فیہا اساور من ذہب, پہنائے جائیں گے اس میں کنگن سونے کے. خود پہننا اور بات ہوتی ہے, کوئی آپ کو پہنائے تو اور فیلنگ بدل جاتی ہے. اور ساتھ ہی کہا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ, اور وہ پہنائے جائیں گے اس میں سبز ریشم کے کپڑے. وَاِسْتَبْرَقٌ, جس پہ چمک ہوگی. استبرق کیا ہوتا ہے بھلا؟ پہلے دور میں لوگ ململ کے دوپٹوں کو ایک چیز لگاتے تھے, ابرق, یہ وہی استبرق ہے, شائنی, گلٹری. مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ, تختوں پہ تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے. نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا, تو دنیا میں اگر اللہ کی مرضی مان لی تو جنت میں یہ سب کچھ مل جائے گا جس کو انسان نے خواہش رکھی. پھر سورت انبیاء آیت 80 کا نمبر نوٹ کیجئے. وَعَلَّمْنَاهُ سُنَّةَ اللَّبُوسِ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ, حضرت داؤد کا تذکرہ ہے. اور یہاں ایک خاص لباس جو لڑائی کے وقت بندے کی تحفظ کرتا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, زرہ, اس کو بھی لباس کا نام دیا گیا. پھر سورت حج آیت 23 نوٹ کر لیجئے. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ, ان کا لباس اس میں ریشم کا ہوگا. تو جنتیوں کے لباسوں کی اتنی باتیں. اور سورت فرقان آیت 47 لکھ لیجئے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا, یہ ایک عجیب لباس ہے, پوری کائنات پہن لیتی ہے جو ادھر موجود ہیں, لوگ چھپ جاتے ہیں, اور وہ ہے رات کا لباس. نوم, نماز, جب سوتے ہیں تو کون سی کیفیت میں چلے جاتے ہیں, بالکل ایک دوسری دنیا میں ہم پہنچ جاتے ہیں نا. تو اس کے لیے بھی لفظ لباس ہے, لیلا لباسا. پھر اس کے بعد سورت فاطر آئے 12 نوٹ کیجئے. وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا, اور تم نکالتے ہو اس میں زیورات جن کو تم بعد میں پہنتے ہو. اور پھر اس کے بعد سورت دوہان 53, يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُس, سندس کے کپڑے پہنائے جائیں گے جنتیوں کو. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ لباس کا سارا ٹاپک کیا سمجھاتا ہے, یعنی یہ میں نے آپ کے سامنے اوور ویو دیا ہے 23 آیتوں کا. اس میں سے میں نے دو چار سکپ کی ہیں کیونکہ وہاں لباس کے معنوں میں لبس یلبسو نہیں ہے. خلاصہ کیا نکلا ابھی تک جو بات کی ہے, کہ لباس اللہ کی نعمت ہے, اللہ نے میرے آپ کے لیے اس کو بنایا, مجھے آپ کو اس کی قدر کرنی ہے. لباس کو اپنے لیے کوئی پابندی یا بوجھ کا ذریعہ نہیں بنانا, بلکہ اس کو خیر کا ذریعہ سمجھنا ہے.